विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दना भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। बहुत अच्छी श्लोक है। आप अगर स्मरण हो या पता हो, छठे अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, याद है कि नहीं? क्या बोलते हो, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम सुदुष्करम। तो वहां बोल रहे हैं कि मेरा अपने मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, कौन सी प्रणाली से? अष्टांग योग से। लेकिन अब यहां आप देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, आप जो अमृत बोल रहे हैं मैं और सुनना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, अर्थात वो अभिलाषा कहां हो रही है? पांव में, नाक में या मुंह में, हृदय में? ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखिए, जब हमारी कथा सुनते हैं तो कान में सुनते हैं, लेकिन बोर कहां होते हैं? मन में। कान में बोर नहीं होते, बोर तो मन में होता है, क्या पका दिया, इतना क्यों सुनना है। उनकी हृदय जो मन है वो कहां धावित हो रहा है? धावत मतलब कहां भाग रहा है? बिजनेस में, युद्ध में, मिठाई की दुकान में, भगवान में। अब ये अंतर देख रहे हैं भक्ति में और अष्टांग योग में? अष्टांग योग में अपने मन को ऊपर आप खींचने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में मन को भगवान की कथा रस का सदन करने का मौका मिल जाता है, तो मन फिर और सुनना चाहता है भगवान के बारे में। देख रहे हैं ना स्पष्ट, यहां अर्जुन बोल रहे हैं क्या, आपने क्या सुना, बोला था रिकॉर्डिंग भेजिएगा, हम समझ नहीं पा रहे, एक बार भी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे ऐसा ना। ही इज बिकमिंग एनलाइवेंड, एनलाइवेंड भगवान से सुन करके, भगवान की महिमा सुन करके। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, एनलाइवेंड को, मतलब उनको बहुत, हाँ मतलब जीना नहीं कह सकते, एनलाइवमेंट का मतलब होता है आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत आलोकित हो जाता है हृदय, ऐसा कहना चाहिए, हाँ उत्कंठित हो जाता है, बहुत उत्कंठा हो रही है। जैसे लोगों को दुनिया की बातें सुनने में बड़ी रुचि होती है, ऐसे ही भक्त को भगवान के बारे में श्रवण करने में रुचि होती है और मन बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। इससे पहले कि हम श्लोक में जाए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि अभी मैं गांव में था तो उस दिन वो निर्जला एकादशी थी, तो हमने भी कुछ खाया नहीं था, पिया तो था, तो भूख बहुत कस के लग रही थी। तो अगले दिन जब 10 बजे प्रसाद लेने का समय हुआ तो एक जब कौर खाया तो ऐसे लग रहा था कि एक एक कौर पे बहुत आनंद आ रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे वाला। तो वही श्लोक आ रहा है यहाँ पे, वयम तु न वितृप्यामा। उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। आप देखिए, स्वादु स्वादु शब्द तो लोग सामान्य मतलब व्यवहार में भी यूज करते हैं, अगर खाना वाना खाते हैं तो वाह बहुत स्वाद बनाया, बहुत स्वाद बनाया, ऐसे करके। तो जब वो कथा चल रही है तो कथा उनको इतनी अच्छी लग रही है, कहते हैं आप रुकिए मत, सुनाते जाइए सुनाते जाइए। हाँ, फायदा ये है कि कथा सुन के कभी कान भरते नहीं है, क्योंकि आकाश तत्व है, पेट भर जाएगा तो आप कहेंगे अरे हाँ अच्छा तो बनाया है, लेकिन अब पेट भर गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे मेरा कान भर गया स्वामी जी आप बंद करिए, अब जगह नहीं बची मेरे कान में, थोड़ा मैं कान में तेल डालूंगा, जगह निकालूंगा, ऐसे नहीं है। तो श्रवण कीर्तन की ये जो भक्ति है, इसको आप अगर स्वाद है तो कितना भी कर सकते हैं। तो यही बात यहां पे बिठाई जा रही है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने संबंध स्थापित कर लिया है, अर्थात क्या है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कृष्ण का भक्ति का कोई भी कार्य बहुत रसमय होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे जीव से ही आप किसी मधुर वस्तु का आस्वादन कर सकते हो, ऐसे भक्ति के माध्यम से ही भगवान के माधुर्य का आस्वादन होता है। और भगवान के माधुर्य का आस्वादन का मतलब है नाम रूप गुण लीला का आस्वादन, या भक्ति की किसी भी क्रिया का आस्वादन। तो अगर प्रेम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति है जैसे साग में नमक नहीं हो। आप लोग रोज सर्विंग कर रहे हैं प्रसाद, तो आप लोग कर्ड राइस सर्विंग कर रहे हैं, उसमें सब कुछ हो लेकिन नमक नहीं हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा प्रभु जी? अच्छा लगेगा ना? कर्ड राइस में नमक नहीं डालिए और हलवे में चीनी मत डालिए, तो देखने तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बढ़िया बढ़िया हलवा सर्विंग कर रहे हैं, जैसे हमारे आकाश प्रभु का मिठाई का शॉप है, तो सारी मिठाइयां हैं लेकिन उसमें चीनी नहीं है तो देखने में तो बहुत बढ़िया लगेगा लेकिन ऐसे कुछ गड़बड़ है, कोई स्वाद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जैसे जैसे भक्त का प्रेम बढ़ जाता है, वो चीनी बढ़ती जाती है, उसे भक्ति की हर क्रिया बड़ी आस्वादनीय लगती है, पर्टिकुलरली श्रवण कीर्तन। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और इसको करने में भक्तों को बड़ा आनंद आता है। यस, तो यहां हमने सीखा कि जिन्होंने अपने संबंध को स्थापित कर लिया है उनके लिए हर पग पे हरि नाम हरि कथा स्वादनीय लगती है। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी के रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अमृतम का एक अर्थ यह है कि ये आपको मृत्यु से दूर रखता है। जितना समय आप हरि कथा में बिताते हो, हरि कथा सुनते हो, पढ़ते हो, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उतने समय मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती, एक बात। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होता है। और तीसरा, ये कभी बोरिंग नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भक्त होंगे जिन्होंने इन श्लोकों को पढ़ चुके होंगे, आप श्लोक भी जानते हैं, लेकिन आप जानते हो जितनी बार आप शास्त्रों को भगवद्गीता को पढ़ते हैं उतनी बार एक दिव्य आलोक प्राप्त होता है। तो अमृतम के तीन अर्थ हैं। क्या है पहला अर्थ? मृत्यु से हम लोग जीत लेते हैं। दूसरा अर्थ है वो नवीन लगती है, नया नया आप आलोक प्राप्त होता है। और तीसरा क्या है? कोई बात नहीं, कलयुग है, आप भूल गए। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भौतिक जगत की कहानियां शुरुआत में बड़ी अच्छी लग सकती हैं लेकिन बाद में फुस हो जाता है। वो फुस समझते हैं आप? कोई जूस नहीं है उसमें, कोई रस नहीं होता। भगवान की कथाएं शुरुआत में भले आपको लगे कि बहुत तपस्या है, लेकिन हम बार बार सुनते रहते हैं तो केवल इसी में ही रस मिलता है और जो बाकी फुस वाली कथाएं हैं उसमें कोई रस नहीं मिलता। मेक सेंस? जितना आप बार बार भगवद्गीता भागवतम को पढ़ने लग जाएंगे फिर उसमें जो एक दिव्य रस मिलता है, टेस्ट मिलता है, व्यक्ति अन्य गल्प, गल्प का मतलब होता है खाली गाल से निकलने वाला, गप्पबाजी से कहना चाहिए, उसे सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। एक व्यक्ति बैठा है वो सोच रहा है और कुछ लिख रहा है और हम इतने मूर्ख हैं कि इसको पढ़ रहे हैं, है ना? शेक्सपियर साहब एक जगह बैठे और सोच रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं। इस प्रकार से शास्त्रों को नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं व्यासदेव सोच रहे थे, हाँ एक कृष्ण था, उसकी प्रेमिका थी राधा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भागवत में हमने पढ़ा है ना, प्रथम स्कंद में साक्षात भगवान की लीलाओं का व्यासदेव जी ने दर्शन किया था और फिर उसको लिपिबद्ध किया है। ये रिवील्ड नॉलेज। ओके, क्योंकि इन सांस, हाँ, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती, नींद आ जाती है, लेकिन सुबह सुबह तो हम देखते हैं इसको। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतार की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। ये अपने जीवन में आप देखिए, अगर आप जप अच्छे से करेंगे, आप जितनी बार शास्त्र पढ़ेंगे आपको दिव्य आलोक प्राप्त होगा। मे बी स्विच ऑफ द स्कूलर एंड स्विच ऑफ, बंद कर दीजिए इसको। तो इस प्रकार से एक दिव्य आलोक प्राप्त होगा और आप महसूस करेंगे कि आप कृष्ण को और अधिक समझ पाए हैं उन शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा। सो कोई प्रश्न है? इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो वस्तु आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल अलग है। और एक और चीज है टेस्ट करना, जैसे आप कुछ संसारिक चीजें पढ़ेंगे तो नींद गायब हो जाती, लेकिन जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये टेस्ट है कि ये जो रचना है वो थोड़ी अलग है। वैसे जब भक्त अच्छे हो जाते हैं उनको ऐसा नींद नहीं आती, लेकिन एक बात बोली जा सकती है। तो भगवान अब क्या बोलेंगे इसके बारे में हम लोग भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। स्टॉप है। श्रील प्रभुपाद की।